इसके बाद अब अगली चंद आयात में वो वाक्या है जिसकी वजह से सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। जो ही सूरत बकरा सुनते हैं तो हम कहते हैं अच्छा, इसमें गाय पर एक कोई लेक्चर होगा, कोई गाय के हालात होंगे, उनकी किस्में होंगी। लेकिन कुरान पाक का अंदाज बड़ा प्यारा है, किसी चीज़ से नसीहत लेने के लिए जो चीज़ होती है उसी को उसका बुनियादी मजमून बना देते हैं। इंशाल्लाह इस पूरे वाक्य को इकट्ठा पढ़ेंगे और इसमें से फिर हम चेकलिस्ट बनाएंगे। वइस काला मूसा लिकौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तस्बहू बकरा। फिर वो वाक्या याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो? ये क्यों कहा? क्योंकि मिस्रियों के साथ रहते रहते इनके दिलों में गाय की बड़ी अजमत आ चुकी थी, गौ माता प्रस्ती का शिकार हो चुके थे। मूसा ने कहा कि इसको ज़िबा कर दो। कहा कि खुदा को ज़िबा कर दें? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में वाकई इतनी अहम हो चुकी होती हैं कि इंसान उसके लिए अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दे। ऐसा ही काम इनके साथ हुआ। कहा हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों की सी बातें करूँ। इससे क्या पता चला कि जाहिलों की बातें करना जो है वो नासमझी की बात होती है और इससे इंसान को पनाह मांगनी चाहिए। बोले अच्छा, अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। जब बंदा कोई काम करना नहीं चाहता ना तो उसकी हुज्जतें करता है। मतलब देखिए कि कोई आपके घर मेहमान आता है, आपने उसको कुछ खिलाना पिलाना है, आप खुद ही रख देते हैं, हाँ पूछेंगे भी नहीं। पानी होगा पानी रख देंगे, जूस होगा जूस रख देंगे, और अगर आपका पिलाने को ना दिल चाहे तो क्या करेंगे? जी ठंडा पियेंगे कि गर्म? ये मैं आपको नहीं पूछ रही हैं। अच्छा शीशे के ग्लास में कि प्लास्टिक के? अच्छा बर्फ डालूं कि नहीं हैं? अच्छा मेरे लिए आप तो पी के ही आए होंगे। ये क्या सवाल होते हैं कि कहीं कोई कह दे कि आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, आप इतनी मुश्किल में ना पड़ें। इनकी हुज्जतें ऐसी थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी समझ गए, इन्होंने कहा कि ये करने वाले नहीं, हम इनको और बताते हैं। अल्लाह ताला से पूछा कि कैसी गाय हो, तो मूसा ने कहा कि अल्लाह का इरशाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बछिया बल्कि दरमियानी उम्र की हो, लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है इसकी तामील करो। फिर कहने लगे अपने रब से ये और पूछ दो कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा वो फरमाता है जर्द रंग की गाय होनी चाहिए, इसका रंग ऐसा शोख हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। जाहिर परस्त है ना। फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय मतलूब है, हमें इसके तायुन करने में शुबा हो रहा है। अल्लाह ने चाहा तो हम इसका पता पा लेंगे। मूसा ने जवाब दिया अल्लाह कहता है वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, न जमीन जोतती है न पानी खींचती है, सही सालम और बेदाग है। इस पर वो पुकार उठे हाँ तुमने ठीक बता दिया। फिर उन्होंने उस गाय को ज़िबा किए वरना वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। और तुम्हें याद है वो वाकया जब तुमने एक शख्स की जान ली थी फिर इसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो इसे खोल कर रख देगा। हमने उस वक्त हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इसके एक हिस्से से ज़र्ब लगाओ। देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। यहाँ पे वो वाक्या पूरा होता है। तीन बुनियादी वजूहात थी गाय के ज़िबा की। एक तो ये थी कि इनके दिलों में गाय की मोहब्बत इतनी थी कि अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि मेरे हुक्म पर गाय को ज़िबा करते हैं कि नहीं करते। और दूसरी वजह ये थी कि इनके अंदर एक शख्स कत्ल हो गया, जो कातिल था उसने होशियारी की और मकतूल की लाश को किसी और के घर के आगे डाल दिया। तो अब एक इस तरह था सोसाइटी में, किसने मारा किसने कत्ल किया, अल्लाह ताला उसका फैसला कराना चाहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये मामला आया तो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई भी गाय लो और उसको ज़िबा करो, उसके गोश्त का एक टुकड़ा लेके मुर्दा के जिस्म को लगाओ वो ज़िंदा होगा। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह क़यामत के दिन भी यही करेगा। जब बारिश पड़ेगी वो बारिश हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरे पे पड़ेगी तो वहाँ से इंसान उगने लगेंगे। किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह ताला ने उस मुकदमे के फैसले के लिए यह तरीका रखा। तीसरी बहुत बड़ी वजह इस कत्ल का गाय के ज़िबा के हुक्म में ये थी कि उनके अंदर ये ख्याल ख़त्म हो गया था कि मरने के बाद हम जिंदा होंगे, तो अल्लाह ताला उस मुर्दे को ज़िंदा करके उनको दिखाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने इतना मुश्किल कर लिया कि गाय को ढूंढना मुश्किल हुआ। फिर कहते हैं कि उनको बड़े पैसों से वो गाय मिली, यानी वो इतनी नायाब गाय हो गई ना, देखे गोरी भी हो चिट्टी भी हो रंग भी ना हो, ऐसे लगता है कि लड़की पसंद करने गए हुए अपने बेटे के लिए, हाँ गोरी भी हो और उसमें सारा हुसन भी हो, और कीमती गाय थी वो, गाय की नस्ल में एक कीमती गाय होती है। तो बाहर हाल जब ये सब कुछ किया तो नतीजा क्या निकला कि उन्होंने एक आसान हुक्म को मुश्किल कर दिया। हम अगर यहाँ अपने लिए चंद सवाल नोट कर सके तो खुद एहतसाबी में इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। पहली बात, क्या अल्लाह का हुक्म सुनकर फौरन मानती हूँ या तावीलात करने लगती हूँ? क्या हंसी मजाक के नाम पर झूठ बोलने को पसंद करती हूँ? क्या फन के नाम पर जहालत की बातें तो नहीं करती? क्या कोई काम करने से पहले इंशाल्लाह बोलती हूँ? क्या मीन मेख तो नहीं निकालती? अब देखिए कि ऐसे रवैये जिसके अंदर अल्लाह का हुक्म सुन के लोग तावीलात करते ना, क्यों, कैसे, कब, उसका एक नतीजा होता है जो बड़ा सख्त किस्म का इंतकाम है अल्लाह ताला का, उसको हम देखेंगे आयत 74 से आगे। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ ہے سزا، جو اللہ کے حکموں کی تعویل کرتا ہے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے जिसमें से चश्मे फूट पड़ते हैं, कोई फटता है और इसमें से पानी निकल आता है, कोई खुदा के खौफ से लरस कर गिर भी पड़ता है, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। आइए हम अपने दिलों का जायजा लें। हमारे जिस्म में, सीने में पत्थर है कि दिल? अल्लाह के हुक्मों को सुन के टूटते हैं कि नहीं? कुरान को सुन के टूटते हैं कि नहीं? क्या हमारा दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त तो नहीं हो चुका? क्या हम नाफरमानियां कर करके दिलों को बंद तो नहीं कर चुके? क्या अल्लाह की याद से आंखों में आंसू आते हैं? क्या मौत याद रहती है? क्या दिल इतना सख्त तो नहीं हो गया कि कोई जहन्नुम की भी बात करे तो कहते हैं अल्लाह खुद ही माफ कर देगा? क्या दिल इतने सख्त तो नहीं हो गए कि ये कह दे कि अल्लाह जहां सबको माफ करेगा मुझे भी कर देगा? क्या मेरे दिल की सख्ती की वजह से मुझसे दीन की नेमत छिनती भी तो नहीं दिख रही? गौर करते रहे, अल्लाह ताला कभी सख्त दिलों को इतनी प्यारी और नरम किताब नहीं देता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दिल अगर नरम है तो और नरम हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बदकिस्मत है वो शख्स कि जिसका दिल सख्त हो जाए, कि आंखों से आंसू ना निकले, जो लंबी लंबी आरजुएं लगा के रखे, जिसको आखरत ना याद हो, जिसको अपनी मौत याद ना हो। इसके बाद अल्लाह ताला दोबारा सिलसिला कलाम यहूद की तरफ करते हैं। अल्लाह के नबी को कहते हैं, जिनको बड़ी हिरस थी कि ये लोग मुसलमान हो जाएंगे, हर मुमकिन कोशिश की, दोस्ती का, सुलह का हाथ बढ़ाया, हर मौके पे उनकी बात को सुन लिया, लेकिन वो मुसलमान ना हुए। अल्लाह ताला कहते हैं, फततमाउना युमिनू लकुम, ए मुसलमानों, अब क्या तुमको इन लोगों से ये तवक्को है कि तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? यानी जो मुर्दे का जिंदा होता देख कर ना पिघले, वो तुम्हारी बातों से ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह का शेवा ये रहा कि अल्लाह का कलाम सुना उन्होंने, फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता इसमें तहरीफ की, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालों में से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी इनको मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से तन्हाई में बातचीत होती है तो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ हो गए हैं, इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में इन्हें हुज्जत में पेश करे, और क्या ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को कुछ खबर है। وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, और इनमें से एक गिरोह उम्मियों का है, यानी अनपढ़ों का है, जो किताब का तो इल्म नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहम और गुमान पर चले जा रहे हैं। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरा का नविश्ता लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि अल्लाह के पास से आया है ताकि इसके मुआवजे में थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर लें। यह लफ्ज़ अमानिश आया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि यह अमानिश क्या है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इनके उलमा की वो कहानियाँ जो उन्होंने घड़ ली और बाद वालों ने तकलीद की बुनियाद पे उसको रिवायत दर रिवायत करना शुरू कर दिया। अगर हम यहूद की अमानी को देखें, तमन्नाएं, झूठी उम्मीदों को कहते हैं, ऐसी खुशफहमियों का शिकार रहना, तो उनकी खुशफहमी क्या थी? हम आग में नहीं जाएंगे, पहली बात, आगे आएगी वो भी इनकी बात। پھر دوسری بات کہتے تھے ہم نبیوں کی نسل میں سے ہیں، ہم پیغمبر زادے ہیں، کہتے تھے اگر آگ میں گئے تو 7 دن میں آ جائیں گے۔ چلیے ذرا آج اپنا بھی حال لے لیتے ہیں، کیا ہم سب یہاں اپنی خوش فہمیوں کی لسٹ بنانا چاہیں گے؟ آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ کتاب کھولتے نہیں، کتاب کو سمجھتے نہیں۔ کتاب کو پڑھنے کا شوق تو ہے لیکن سمجھنے کا نہیں، اور شوق ہے تو اس کے لیے قربانی دینا پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف حال کیا، فلاں دروازے سے گزر جاؤ تو بہشتی بن جاؤ گے، مر جائے کوئی تو اس کی قبر میں فلاں عہد نامہ رکھ دو تو معاف کر دیا جائے گا، ہیں کچھ ایسی امانش، فلاں کا پلو پکڑ لو تو تمہیں لے جائے گا، اللہ کرے ایسا ہو۔ دیکھیے ایسا ہوتا تو اور کیا چاہیے تھا، ابو بکر کو یہ بات پتا چلتی تو کیا اتنی قربانیاں دیتے اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کے نبی اپنے پاؤں کو زخمی کرتے؟ اصل بات کیا ہے کہ جب زندگی میں کتاب نہیں رہتی نا تو خوش فہمیاں رہتی ہیں۔ چھوٹی سی مثال دوں گی جس سے شاید بات زیادہ سمجھ آ سکے، کہ آپ کا ایک بچہ ہے، بہت محنت کرتا ہے، خوب پڑھتا ہے، محنتی بھی ہے اور انٹیلیجنٹ بھی ہے، آپ اس کو آخری دن تک پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا سو جاؤ، بہت پڑھ چکے ہو۔ وہ کہتا نہیں امی، ایک دوہا دوہرا لوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بچہ نہیں، آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، جو سنجیدہ ہوتا ہے وہ آخری وقت تک پریشان رہتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس کے برعکس ایک نکھٹو اور اناڑی جس نے سوچ ہی یہ لیا ہے کہ میں نے پڑھ پڑھا کے کیا کرنا ہے، میں نے بھی تو باپ کی طرح دکان ہی کھولنی ہے جس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتائیے اس کے اور اس کے رویے میں فرق ہے نا، یہ خوش فہمیوں کا شکار ہے۔ بالکل اسی طرح جب کتاب سے لوگ دور ہوتے ہیں تو اس کی جگہ خواہشات آتی ہیں، اور نتیجہ کیا آتا ہے، خود ساختہ باتوں کو اللہ کی باتیں کہتے ہیں۔ پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت ہمارے کلچر میں، خاص طور پہ اردو زبان، جتنی کتابیں دین کے نام پہ معروف ہیں سڑکوں کے کنارے اور ادھر ادھر رکھی ہوئی، اس میں سے اکثریت امانیش کا مجموعہ ہے۔ اللہ کی مرضی تو جانی نہیں، اپنی خواہشوں کے غلام ہو گئے، اس لیے یہاں ہم دعا کریں گے، ایک دفعہ اللہ کی کتاب کو سمجھ جائیں، پڑھ لیں، اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے، پھر اس کے بعد جو بات اس کے مطابق لگے گی اس کو مان لیں گے، اور جو اس سے الگ ہوگی اس کو الگ کر دیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرح کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، آ گیا نا ان کا جملہ، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ آج بھی ہم اپنے ان مسلمان ساتھیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ نے کہیں لکھ دیا کہ تمہیں جہنم نہیں ملے گی؟ جو خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا پھر خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے کلام میں سے پکار آتی ہے کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں اس 4 دن کی دنیا میں بھیجا ہے، اس کی مرضی کا رہ لو، وہاں جاؤ گے تو تم اپنی مرضی سے رہنا۔ آپ بتائیے کہ کون سی بات اچھی ہوگی؟ کوئی آپ کو کہے کہ صرف 1 دن تم میری مرضی مان لو، اس کے بعد ہر دن تمہاری مانوں گا، بس شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے نا، بس 1 دن مرد ہاں کرتا ہے پھر ساری زندگی بیوی کی ماننی پڑتی ہے، ہاں چلیے وہ تو ایک شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، خالق اور مخلوق کے ساتھ اگر اس بات کو سمجھ لیں، ہم کتنے دن اس دنیا میں رہیں گے؟ اپنی عمر کے ماہ و سال کو جمع کر کے دیکھ لیں، جانا تو ہے نا، اگر وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ 4 دن کی زندگی تو گزر گئی، اب تو تمہارے لیے آگے اندھیرے ہی ہیں، کیا جواب دیں گے؟ یہاں ہم ہائی لائٹ کریں گے آیت 81 کے شروع کو، بلا من کسب سیئتا احاطت بہ خطیئتہ، اور یہاں اپنا محاسبہ کریں گے، میری کن کن خطاؤں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک کردار آتا ہے، और उसके चारों तरफ नाचती फुदकती हुई कुछ बुराइयाँ, कुछ गुमराहियाँ। इंसान एक गुनाह करता है ना तो दूसरा गुनाह उसके लिए और आसान हो जाता है, फिर दूसरा करता है तो तीसरा आसान होता है। एक नमाज आप छोड़ें जान के, अगली खुद ही छूट जाएगी। एक छुट्टी आप किसी मजबूरी से करें, अगले दिन आना मुहाल हो जाएगा। अगर दिल पे जबर करके नहीं आएंगे ना तो तीसरे दिन आने की तौफीक ही नहीं होगी। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को चेक करें, अल्लाह से दुआ करें, मदद मांगें कि अल्लाह तू हमारे लिए बुराइयों से निकलना आसान कर दे। ऐसे सोचे कि कुछ शख्स दलदल में, दलदल जानते नरम सी जगह होती है जिसमें इंसान धंसता जाता है, कोई बड़ा मजबूत हाथ आता है ना तो वही उसको बचा सकता है, वरना जो उसको पकड़ता है वो भी उस मिट्टी में चला जाता है। अगर हम अपने आप को किसी बुराई का शिकार समझते हैं ना तो अपना तस्किया करें, अपनी उन आदतों से जान छुड़ाएं, अपने साथियों दोस्तों घर वालों से दोस्ती करें, बैठ के बात करें। घर में बैठे हैं ना तो बैठ के बच्चों के साथ बात करें कि चलो बच्चों मिल के इस बुराई को छोड़ते हैं, हमने गीबत नहीं करनी, मिसाल है, इस पे इकट्ठे काम करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये खताओं के जो दायरे हैं ना ये ज़िंदगी से हटते जाएंगे तो अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत मिलेगी, और इसके बाद फिर इंसान को वाकई वो बात मिलती है कि जो गुनाहों की चार दीवारियों के अंदर रहते हुए अल्लाह का कुर्ब नहीं इंसान को मिल सकता।